اللہ پاک کا قرآن میں یہ عجیب پیغام ہے کہ اس آیت کو سننے کے بعد جو مومن ہے, ایمان والا انسان ہے, اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. اللہ کل شیء حسیبا, ہر چیز کا حساب لے گا. ایک حضور فرماتے ہیں کہ اس آیت نے مجھے تبدیل کیا. اتنی بڑی آیت ہے یہ کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی کتنی احتیاط کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے. جبکہ اس کو پتہ لگ جائے ایک ایک چیز اللہ کل شیء نصیبا, اللہ پاک ہر چیز کا حساب لیں گے, ہر بات کا حساب لیں گے. ہر سے مراد جو بھی ہے انسان فیل کر رہا ہے, بات کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, سوچ رہا ہے, سب کا اللہ کے دربار میں حساب دینا پڑے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی مومن کی زندگی جو ہے مکمل احتیاط والی زندگی ہے, بے انتہا احتیاط کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے وہی کامیاب ہو سکتا ہے. کھلا لگام نہیں گھوڑے کی طرح, جو چاہے بات کر لے, جو چاہے فیصلے کر لے, جس پہ چاہے غصے ہو جائے, جس کو چاہے جیسا برتاؤ کر لے, جس کے ساتھ جو چاہے, کچھ نہیں ایسا نہیں. بلکہ یہ ہے کہ وہ تو ہر قدم پر, ہر سوچ پر, ہر بات پر اس کو اتنا محتاط ہونا چاہیے کہ بھئی غلط تو نہیں میں کر رہا کہیں. یعنی اس کی ایک مثال عجیب ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی تو ایسے گزرنی چاہیے کہ جیسے انسان نے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سامنے کیچڑ آ گئی ہے, مڈ ہے بہت زیادہ, جب اس میں سے وہ گزرے گا تو کتنی احتیاط سے گزرے گا کہ ایسا نہ ہو یا کوئی چھینٹا میرے جسم پہ پڑ جائے, میں نے نماز بھی پڑھنی ہے, میں ناپاک ہو جاؤں گا, میرے کپڑے بھی کوئی دھاگا نہ پڑ جائے. کرے گا نا آدمی احتیاط. یہی زندگی انسان کی ہے. جب اس طریقے سے انسان زندگی گزارے گا تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بھائی اللہ کا خوف ہے اس میں, اس کو معلوم ہے کہ میرا حساب ہوگا, اللہ کے دربار میں نے پیش ہونا ہے. ہر ایک ایک قدم وہ بڑا سوچ اور سمجھ کے رکھے گا, ہر معاملہ بڑے سوچ کے کرے گا, ہر فکر اس کی بڑی سوچ والی ہوگی. بلا وجہ کی گفتگو نہیں ہوگی, بلا وجہ کے تعلقات نہیں ہوں گے, بلا وجہ کی ناراضگی نہیں ہوں گے. ہم تو بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں, بڑے بڑے معاملات کر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں جیسے بے خائی کچھ ہمارے, مطلب کوئی ہمارے پر کنٹرول ہی نہیں. جس انسان ایک بے کنٹرول زندگی گزار رہا ہے जब चाहे इबादत कर ली, जब चाहे एक रंग बदलते रहते रंग हर वक्त हमारे, कभी किसी रंग में आदमी होता है, कभी किसी रंग में होता है, कभी जो चाहे कर लिया, कभी किस्सा कर लिया, ये तो जिंदगी नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अल्लाह काना अला कुल्ली शैन हसीबा, हर चीज का हिसाब अल्लाह पाक लेंगे। तो ये पैगाम दिया अल्लाह पाक ने। बहुत एहतियात से इंसान को जिंदगी गुजारनी चाहिए, अपने मामलात बड़े ही एहतियात के साथ करने चाहिए। वजह उसकी बता दी अल्लाह ने पहले कि क्यों नहीं करता इंसान, उसको यकीन नहीं है। इनमें बताया मुफस्सिरीन कहते हैं इनमें सारी बात बता दी कि जिसको उनको यकीन नहीं इस बात का कि कोई हिसाब होगा। हम सुनते हैं उलमा को, हमसे बातें सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, लेकिन यकीन नहीं आया इस बात का। यकीन तो ऐसा होता है कि मुझे यकीन हो कि भाई बार बारिश होगी, मुझे पक्का यकीन है, तो फिर मैं कैसे जाऊंगा बारिश में, मुख्तलिफ होना निकलना मेरा होगा ना, छाता भी लूंगा, कपड़े ऐसे पहनूंगा, एहसास भी होगा कि बारिश में बारिश बाहर हो रही है, मुझे वैसे जाना चाहिए, बाहर आग लगी हुई है तो मैं वैसे जाऊँगा ना, कि आग से मैं कैसे बचूंगा, क्योंकि यकीन है अच्छी उसका। अल्लाह ताला यही कह रहा है कि तुम्हें यकीन नहीं है, था ही नहीं यकीन कि मैं रब हूँ तुम्हारा, मैं खालिक हूँ, तुम्हें मौत भी आएगी, तुम्हें एक मेरा दरबार भी लगेगा, एक क़यामत भी आएगी, तुम उसमें खड़ा होना पड़ेगा, तुम मरोगे भी, कब्र में तुम जाओगे, तुम्हारा हिसाब किताब भी होगा। जिसको ये यकीन हो तो वो कैसे ऐसे ज़िंदगी गुजार सकता है कि जो चाहे करे, अपनी मंशा से अपनी मर्जी से उसके फैसले ज़िंदगी कैसे हो सकते हैं बताए। तो मैं और आप सोचते हैं इस मामले में कि क्या हम ये किस किस के मुसलमान अल्लाह ताला एहसास दिला रहे हैं हमें, मेरे भाइयों देर आए दुरुस्त आए, अभी भी देर नहीं है, अभी जिंदा है हम। वादा करें हम सब बैठ के कि अल्लाह ताला हमें वो अकल और शऊर दे कि हमें यकीन हमारा पक्का हो जाए तेरी हर चीज़ पर, तेरे हर पैगाम पर मुझे हमें पक्का यकीन हो जाए, जो हम कुरान पढ़ते हैं, जो हम बातें सुनते हैं। ये एक ही आयत काफ़ी है बंद समझने के लिए, बंदे के लिए यह है नहीं इतनी काफ़ी है कि भाई मैं बात करने लगूंगा तो मुझे पता होगा मैंने इसका हिसाब मेरा होगा, मैं कोई लेन देन करूँगा तो मुझे पता है इसका कोई हिसाब होगा, मैं किसी ज्यादती करूँगा तो मुझे पता है इसका हिसाब होगा, मैं किसी इबादत को तर्क करूँगा मुझे पता होगा, अल्लाह किस चीज़ से मना कर रहा हूँ कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा। जब ये इंसान के अंदर एहसास पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर वो एक ईमान वाली ज़िंदगी गुजारता है। जी कुरान बातों के लिए थोड़ी आया है कि हम बस बातें करते रहें और बस गप्पें मारते रहें और सुनते रहें बस, वो ये सुनने सुनाने के लिए बात नहीं, ये तो एक अमली ज़िंदगी है हमारी और बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रही है। और ये ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम एहसास कर लें ज़िंदगी को तो कुछ पता नहीं भाई हो, आज भी एहसास कर लें अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करें हम कि नहीं भाई खालिक मालिक है जिसको मैंने हिसाब देना है, सुबह भी वैसे उठें, शाम को भी वैसे करें, दोपहर वैसा करें, लेन देन वैसा करें, कारोबार वैसा करें, घर के ताल्लुकात वैसे करें, रिश्तेदारी वैसे करें, मामलात वैसे करें, फैसला करते वक्त सोचें वैसे, गुस्सा आए तो सोचें, खुशी हो तो सोचें, ताल्लुकात को सोचें, करना चाहिए दोस्तों ने जी। तो अल्लाह ताला कहता है मैंने हिसाब लेना है, हिसाब लेना है, कैसे बच सकता आदमी। ये नहीं कि छोटे मोटी बातें, अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेना, हर चीज़ का जो हिसाब में जहाँ कमी होगी उसके लिए अल्लाह ने जहन्नुम को तैयार किया हुआ है, वाज़ह तौर पर अल्लाह ताला ने बताया कि उसको सजा दी जाएगी, उसी वक्त जहन्नुम में फेंकूंगा मैं, उसी वक्त फेंक दूंगा। अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी में एहतियात नसीब फरमाए। सुनन इब्न दाऊद की एक हदीस है, इसी ज़माने में आप खिदमत पेश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला हम सबको समझ भी दे कि बे एहतियाती और एहतियात में देखें कितना फ़र्क हो जाता है आदमी के, कि रोज़े क़यामत में इस हदीस के मफ़हूम में से है, एक शख्स को इस बे एहतियाती ज़िंदगी गुजारने पर जब पकड़े जाएंगे लोग, पकड़े जाने हमने बच तो नहीं ना सकते, वो ये दुनिया की अदालत तो नहीं है, सिफारशें चल जाएंगी, वकील पक्का कर लेंगे, बैरिस्टर कर लेंगे, जमानत ले लेंगे, चलो भाई वहाँ जेल में थोड़ा वक्त गुजार के फिर बाहर आ जाएंगे, वो तो अल्लाह की अदालत होगी, इसमें तो कोई हिसाब ही नहीं, ना कोई वकील है, ना वो तो अल्लाह की अदालत में इंसान खड़ा होगा, फटाफट फैसले जीरो जकड़ते हुए फरिश्ते ले जाएंगे। सब कुछ अल्लाह ने कुरान में बताया है, रोज रोज है ना कुरान में पढ़ते हैं चीज़ें, उन्होंने कुरान से भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं रोज। लेकिन भाई वो क्या है, अल्लाह शुबा है, अल्लाह ताला फरमाया है शकूक में डूबे हो तुम लोग, शैतान नफ्स ने दबा दिए हमारे दिलों को, बस हम बड़े फन्ने खास समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, हो ये कर दो, वो फलां कर दो, ये गुस्सा आ गया तो बस कोई जो नीचे आया उसको खूब दबाया, जो ऊंचा आया उससे दब गया, कोई हिसाब नहीं हमारा। तो इसी सिलसिले में एक अजाब के बारे में अल्लाह के नबी ने बताया कि कुछ लोग ऐसे होंगे, लोग उम्मत में ऐसे लोग होंगे जिनको एक अजीब अजाब दिया जा रहा होगा जहन्नम के अंदर, क़यामत के अंदर क्या अजाब दिया जा रहा होगा, अजीब नोयत का अजाब होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम में इनके मुंह के अंदर दो जबानें होंगी और दोनों आग की जबानें डाल दी जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, बाहोश होगा आदमी, ये नहीं समझते मर गया तो आदमी चलो मिट्टी चला गया, ये अब कंसेप्ट इस्लाम का नहीं है, मिट्टी छिट्टी कोई नहीं होता, बंदा वहीं वैसे बन जाता है जैसे अभी है, ये याद रखना, मिट्टी छिट्टी कोई नहीं चलता वहां, तो बिल्कुल वही इंसान होगा। फर्ज करें मैं और आप हैं सब, ये अभी हो जाए हमारे साथ, हम तो एक फुंसी बर्दाश्त नहीं करते, एक पायल भी हो जाए, एक थोड़ा सा स्पॉट भी हो जाए तो क्रीमें लगाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, जो देखें कैंसर ना बन जाए इंजेक्शन लगवाते हैं, करते हैं ना, वहाँ देखें क्या होगा, एक सेकंड में ये काम शुरू हो जाए, एक सेकंड लगता है बस, फूंक निकली नहीं और अंदर डाला नहीं कवर के, उसमें कितनी देर लगती है फूंक निकलने बाद कवर तक जाने में, कुछ भी नहीं लगता वक्त, फटाफट फारिग करते हैं आदमी, लोगों ने काम भी करने होते हैं नहीं करने होते, लेके कौन बैठता है उसको, ना बाप को लेके बैठते हैं, ना माँ को लेके बैठते हैं, ना बीवी को लेके बैठते हैं, वो जिनको सीने के साथ लगाए हो जान छुड़ाते हैं आदमी, यार ज़्यादा देर रखेंगे बदबू आ जाएगी, जल्दी जान छुड़ाओ इसको, थोड़े देर रोना पीटना ख़त्म हो जाता है, वो अपना धकेलता है, कैसे अल्लाह बेगाना कर देते हैं आदमी को, कितना बड़ा अल्लाह ताला ने बेरुखी दिखाई है कि ये है तुम्हारी ज़िंदगी, जिस पर तू नाश करता था, जिससे तू मोहब्बतें करता था, जिसको तू अपना समझता था, वही अगर जल्दी यार जान छोड़ो, अब अभी रखेंगे थोड़ी देर तो, यानी ये भी है कि गर्म ही रखते क्यों, उसके बाद फ्रिज में रखो, बर्फ़ में रखो, बर्फ में क्यों ना सड़ पड़ेगा, सड़ जाएगा, अंदर से गंध निकलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, भला शुभ अल्लाह, ये यकीन नहीं है बातों का, देखते हैं इसी का नाम तो सबसे बड़ी कमजोरी है इंसान की, ईमान होने के बाद ही यकीन ना हो आदमी का, तो यारो इसमें कितनी बड़ी कमी है हमारे खुदा की कसम, कितनी बड़ी कमी है, कितनी बड़ी कमी है जिसके इंसान को अजाला करना चाहिए। क्या हाल है, जिस हदीस में पता चलता है ना क्या हाल है, फरमाया दोज़ख के अंदर उनको ये अजाब दिया जाएगा कि उनके मुंह के अंदर दो आग की जबान डाल दी होंगी, और वो जबानें होंगी कब तो होंगी, अल्लाह सब, क्या हाल होगा फिर मेरा और आपका, अगर ये हाल हो जाए हमारा अल्लाह माफ़ फरमाए तो मुझे बताओ कौन बचाएगा भाई। अमार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि भाई अल्लाह के नबी समझाए कि पता है कौन लोग होंगे, अब हम क्या समझते हैं, जिसने जाओ वो बड़ा गुनाह किया होगा, जिसने जाओ बस ये काम नहीं किया होगा, बस हम तो नमाजी हैं जी, हम तो फलाएँ हैं, हम तो ये हैं, बस धक्करबाज बहुत कर लेते हैं ना। स्थानवी रहमतुल्लाह की मुझे बात याद आती है ना, क्या बेहतर मकूला है, हम तो हकीम उलमत थे ना, इबादत जो है वो आदत बन जाती है फरमाते हैं, इस पर गमन मत करना, इबादत आदत बन जाती है, ये तो आदत बन जाती है इंसान की, आज आप नहीं उठेंगे कल आपको उठाना शुरू करेंगे, उठा करेंगे जमात वाले आपको ले जाएंगे इंशाल्लाह, एक दो दफा बिठाएंगे सर लगाएंगे, नमाज की आदत पड़ जाएगी आपको, तो आप नमाजी बन गए ना, ये नहीं होता, इबादत जो है आदत बन जाती है, लेकिन ये क्या है कि आदत जो हकीकत में क्या है, इंसान के अंदर जो ख्वाहिश और गलाइज है ना वो आदत नहीं बनते, उनके साथ हर वक्त इंसान को लड़ना पड़ता है, देखें नहीं आदमी, मैं जब सही हो गया फिर उसके बाद फिर वही, मैं जब ठीक हूं बस अब तो है मैं फला, रोज मेरे साथ तो यही कहानी होती है ना, आज मैं बड़ा अच्छा हो गया बस तीन चार दिन, ये तो ड्रामे हैं, ये इन बातों में कौन है, ये तो सब अल्लाह के साथ इस्तेजा करने वाली बात है, ये कोई जिंदगी नहीं है हमारी। अल्लाह को धोखा देने, आज में अच्छा हो गई, कल में ठीक हो गई, परसों जाकर फिर वही काम, ये नहीं। आदत बनाए इंसान अपने अखलाक, जब इंसान के अंदर की जो कैफियात है ना वो आदत बन जाए। नमाजों में घमंड मत करें, इबादत पे घमंड मत करें, ये तो आदत बन जाती है। 30 दिन आपने रोज़ रखे, पहले रोजे में आखिर रोजे में कितना फर्क होता है, होता नहीं होता, क्योंकि जो आखिर आदत बन जाती है तो खाम खा भूख लगती है आदमी को 2 बजे लगती है, लगती तो आदत बन गई उसको खाने की, और सारा दिन भूख नहीं लगेगी फिर आप, क्योंकि आदत नहीं रही खाने की, 6 बजे भूख लगेगी। इसमें क्या तीर्थ मान लिया 30 दिन के रोजे रख ली, तो आदत तो यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि झूठ की खत्म किया तो आदत बन जाएगी झूठ कभी नहीं बोलना, तब मजा आता। तो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता है इसमें क्या क्या था, इसका गुनाह क्या था, और ये ऐसा गुनाह बता रहे हैं कि जो गुनाह तो क्या हमारी वो क्वालिटी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, आज के माशरे में मेरे और आपके नज़दीक वो क्या है, क्वालिटी है, इसको समझाते हैं, उस की तारीफ किया था सुबहानअल्लाह, याद में तो वो है जनाब, क्या बात है जी, उस गुनाह ये है ना, वो बात बता रहे हैं कि भाई इंसान नहीं यकीन करता कि अल्लाह हिसाब लेंगे, तो उसको छोटा शैतान ने तारीफ बना दी हमारे लिए, बल्कि हम तारीफें करते हैं ऐसे आदमी की जिसमें ये गुनाह मौजूद हैं। क्या गुनाह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो शख्स होगा वो जो दो रुखा होता है, क्या होता है, दो रुखा, 2 faces, जबानी कितनी आएंगी, 2, मुंह भी 2, क्योंकि जिंदगी उसने क्या था, 2 रुख के साथ जिंदगी गुजारी थी, अल्लाह ताला उसके चेहरे को बदल देंगे रोजे क़यामत, अल्लाह माफ़ फरमा, 2 रुख थे उसके। फिर आगे एक्सप्लेन किया अल्लाह के नबी सुनने उसके कैसे 2 रुख थे, और जी मिसाल दिए, पहले मिसाल दी है कि उसकी वजह बताइए, मुनाफिकों की तरह, इसका मतलब मुनाफिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वो कलमा पढ़ने वाला होगा, नमाज पढ़ने वाला होगा, रोजे रखने वाला होगा, उम्रे करने वाला होगा, हज करने वाला होगा, तलावतें करने वाला होगा। ये बात समझ आ रही दोस्त, नहीं आ रही, लग रही है दिल पे बात थोड़ी सी, सब कुछ करने वाला होगा, फरमाया वो मुनाफिकों की तरह, लेकिन अंदर क्या होगा, वो मुनाफिक होगा, नफाक होगा, बात तारीफ हो रही होंगी उसकी, अल्लाह से ताल्लुक सही जुड़े आते हैं, लेकिन होगा क्या, वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुनाफों की तरह उसको क्या काम होगा। फिर अब सिफ्त बताई जा रही है कि 2 रुख आदमी में सिफ्त क्या होगी, यही सिफ्त है जो आज जिसको हम कहते हैं जी बड़ा 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 ऊंचा आदमी है, कौन सी सिफ्त है, कौन सा गुना है जिसको हम सिफ्त कहते हैं, अल्लाह के नबी उसको क्या फरमाने, उसकी सजा कितनी बड़ी है, वो क्या करता था, मुख्तलिफ लोगों में जाकर मुख्तलिफ बातें करता था, अल्लाह बाहर निकले आदमी मिले उससे वैसी बात कर ली, नहीं जी ठीक है, उधर तो उससे दूसरी बात शुरू कर दी, उसके उसकी ये बुराई कर दी, उसके जाकर उसके मुंह पे ये तारीफ कर दी, उसको कहते नहीं जी ऐसा तो नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, डिप्लोमेसी, हिकमत, हिपोक्रेसी, नहीं हिपोक्रेसी हम नहीं कहते, तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं इसको हम कहते हैं हिकमत है, दानाई है, बड़ा चलाक आदमी है जी, बड़ा होशियार आदमी है, दुनिया चलाना आता है जी इसको, कारोबार हो, माल हो, घर हो, रिश्तेदारी हो, आपस में हो, बिल्कुल 2 रुख बने बैठे थे, बेटा बाप के साथ, बीवी औलाद के साथ, खामिद बीवी के साथ, किसी को किसी पर अंदर से एतबार नहीं है, मैं आपको हकीकत बताऊं, कौन डिविजन, आपकी बीवी आप पे नहीं करेगी, आपकी बीवी आपके बच्चे आप पे नहीं करेंगे, पत्नी यार ये क्या कह रहा है, सही भी कह रहा है नहीं कह रहा, आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, आपके घर वाले नहीं करेंगे, आपके कुर्बदार नहीं करेंगे, वो ऐसा आप मस्जिद में हो, मस्जिद से बाहर निकले, कोई एक दूसरे पे क्या है, पता नहीं किस रुख पे इंसान क्या बात कर रहा है, किसको कैसे खुश कर रहा है, किसी को कैसे खुश कर रहा है, इधर कुछ कह रहा है, इधर कुछ कह रहा है, यानी अजीब रुखों के अंदर इंसान की जिंदगी गुजर रही है, ये ऐसा है माहौल हमारा नहीं है भाई। सियासत ले लें, मामलात ले लें, सियासत की दुनिया होती है बहुत बड़ी तारीफ की जाती है, बड़ा ऊंचा आदमी है जी जो ये काम करता है, उसको तो बहुत बड़ा डिप्लोमेट कहा जाता है, डिप्लोमेट है जी, क्या बात है, बड़ा पॉलिटिशियन है ये तो, जोड़ तोड़ करना खराफात है सबसे बड़ी, मोमिन की शान नहीं, मोमिन क्या है कि जो अंदर है वो बाहर है, एक फैसला बोले सुबह तो कह दिया, साफ कह दिया जी नहीं यह गलत है, तो कह दिया बिल्कुल सही है जनाब, डट गया। दो रुख नहीं हुए, जहां भी इसने कहा आप गलत है तो बाहर निकल के भी कहेगा आप गलत हैं, एक आदमी के सामने गलत कहे तो 10 आदमी के सामने भी कहेगा आप गलत हैं, हाथ नहीं मिलाएगा, नहीं यार आपसे नहीं, उससे मिला उसको आंख मार दी, उसको मिला उसको हाथ मार ली, क्योंकि बस अपना पता सही रहे, मुझे लोग, मेरा काम चलता रहे, मेरी गद्दी पक्की हो जाए, मेरी नौकरी सही रहे, मेरा जनाब मामला बड़ा पक्का रहे, ये हमारी जिंदगी का एक रुख है। तो उसकी सजा क्या बताई अल्लाह के नबी ने कि ऐसे शख्स, मुझे तो लगता है कि शायद 99% लोग ऐसे हाल में जाएंगे रोज़े क़यामत में। अल्लाह दो रुख, हमारी रिश्तेदारी से चलती है, हमारे कारोबार से चलते हैं, हमारी शादियाँ ऐसे चलती हैं, हमारे ब्याह ऐसे चलते हैं, हमारे घरबार ऐसे चलते हैं, हमारे मामलात ऐसे चलते हैं, इसको राज़ी कर लो बस, ये राज़ी कर लो भाई, उसको नाराज़ कर दो, ये उसको नाराज़ छोड़ दो, बस इसको राज़ी करना है, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा है। हो रहा है ज़िंदगी में, नहीं हो रहा, बाकी सब का मामला है, बस माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, इबादतें हो रही हैं, बहुत ड्रामे बहुत हैं, लोग कह रहे हैं बड़े दीनदार हैं, मियाँ अल्लाह से ताल्लुक सही करो, अंदर से बातो, अंदर से देखो, ये हदीसें में बताती हूँ, अपने आप को अंदर से टटोलो, बातिन को टटोलो कि मैं हूँ क्या, ये तो आदत बनी हुई है हमारी, इबादत जो बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आदत है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अल्लाह ने हमें इबादत की तौफीक नसीब फरमाई है, ये तो बहुत बड़ा करम है। लेकिन क्या है कि ये इसको भी खराब कर रहे हैं हम, अल्लाह ने इतना बड़ा नेमत अता फरमा दी, सजदों की, रुकू की, नमाजों की, जमातों की, तलावत की, बहुत बड़ी नेमत दे दी है, लेकिन इतने बदतमीज हैं कि इसको भी बर्बाद कर रहे हैं अपने इन गुनाहों के साथ, इनको भी डुबो रहे हैं। ऐसे आदमियों को जिनको अल्लाह ये तौफीक दे रहे हैं, उनको तो और एहतियात करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ये मैं अपनी इबादतों को महफूज करूं, इनको बचाऊं, ये तूने बड़ी नेमत दी है, करोड़ों से हजारों में नेमत दी है कि फजर पे आके इंसान कोई नमाज पढ़ लेता है, कम नेमत अल्लाह ताला की मुझे बताया, तलावत कर लेता है कुरान, किसी नेक इंसान की बात सुन लेता है, किसी आलिम के सामने बैठ के उसकी गुफ्तगू सुनता है, उसकी हदीसें सुन लेता है, उससे बहुत बड़ी नेमत है। तो इसको क्या हम सह करते हैं इन बातों के साथ, ये कामयाब जब ही होंगी जब हम अपने आप को अंतर से भी देखें कि हम हैं क्या, इन बातों को छोड़ें, वादा करें कि हमने दो रुख हम नहीं होना, अल्लाह करते हैं भाई पक्का वादा है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, दो रुख खत्म एकदम से बर्बाद हम, तो इसी हाल क्या होगा हमारे रोजे के अहमद के अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और मिसाल अल्लाह ने क्या दी, वजह क्या है इसकी, अल्लाह के नबी ने बता दिया वजह उसकी क्या है, मुनाफिकों की तरह कि तेरे दिल के अंदर नफाक मौजूद है जो तू ये काम करता है, अंदर से तू मुनाफिक है, तेरा दिल गंदा है, नफाक कहाँ होता है भाइयों, दिल के अंदर होता है, ये दिल तेरा गंदा है, बिल्कुल बर्बाद हुआ है जी, जहां देख ले जब तक गुनाह नहीं होंगे अंदर के तब तक दिल गंदा नहीं होगा, सारे मामला जो निकलते हैं दिल की गंदगी से निकलते हैं, जब एक टैंक बदबूदार हो जाए, गंदा पानी हो जाए, तो सारे नालों में जो पानी आएगा वो कैसा होगा, बदबूदार होगा, बदबूदार होगा ना, खूबसूरत से टैप में आप पानी निकालेंगे लेकिन पानी बदबूदार आ रहा होगा, क्योंकि टैंक जो है उसमें बदबू है, तो दिल जो हमारा गंदा है, इसमें से जो चीज भी निकलेगी वो क्या निकलेगी, गंदी निकलेगी। अल्लाह के नबी ने यह बताया कि मुनाफिक नफाक को खत्म करो, किस तरह करो, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह तआला फरमाता है, इसमें जात से अल्लाह का जिक्र करो, नफी असबाब से अपने आप को वजू दो और गुस्ल करो, अपने दिल को किससे साफ करें, जैसे जिस्म को साफ करते हैं किससे, पानी से साफ करते हैं, तो उसके लिए कौन सा पानी बनाए, अल्लाह, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कि इसमें जात के पानी से अपने अंदर धो अपने आप को, सुभान अल्लाह, जब इंसान पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह तो अंदर से उसका वजू हो रहा होता है, सुभान अल्लाह, जब हम बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं तो दिल अंदर से धुल्ला होता है, सफाफ रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, गंद निकल रहा होता है उसका, गंद निकल रहा होता है, आधा घंटा दिल के साथ बैठ के इंसान अल्हम्दुलिल्लाह मुराकबा करे, दिल की तरफ तवज्जा फरमा कर, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह अल्लाह, ऐसा हल्का करके उठा देते हैं इंसान को जैसे अभी कोई गुनाह किया ही नहीं इंसान ने, ये भी नहीं करना हमने, है ही नहीं कोशिश के भाई, कोशिश करे आदमी, अब हमारे भी कपड़े गंदे हो रहे हैं, पता है गंदे हो रहे हैं, तो अब यही है कि वॉशिंग मशीन में जाएं उसमें डालें, घर में नहीं तो बाहर जाकर धुलाएं, सर्फ डालें, जो चीज डालते हैं ना इसमें, तो जब पता है कि हमारे अंदर नफाक मौजूद है, इतने बड़े बड़े गुनाह हमारे अंदर हो रहे हैं, तो उसी कसरत के साथ अल्लाह ताला ने इसी वजह से जिक्र की तादाद नहीं दी। देखें हर इबादत की तादाद दी है ना, पूरे कुरान उठा के आप देख लें, बड़ी से बड़ी जो फराइज इबादत हैं, फराइज 5 हैं तो क़यामत तक कितनी रहेंगी, 5 रहेंगी। सवाब कितने का मिलेगा, बोले 50 का। सुभान अल्लाह, ये भी सरकार की रहमत से। 5 के बाद आज नहीं कहते चलो आज 6 फर्ज कर लेते हैं, नहीं कर ले तो पढ़ते रहो ना, नफिल नहीं, 5 अल्लाह ने कहा 5 चाहिए मुझे दिन में, ज्यादा नहीं चाहिए, खालिस 5 नमाजें मुझे पहुंचा दे, है जन। इसी तरह रमजान के रोजे 30 रखे, ज़कात की भी तादाद दी, लेकिन अल्लाह ने अपने जिक्र के बारे में तादाद नहीं, क्योंकि उसका मकसद, उसका काम डिफरेंट है, इन इबादत से डिफरेंट काम है जिक्र का। जिक्र बतौर इलाज दिया अल्लाह पाक ने, बतौर इलाज दिया है, इबादत के नहीं दिया। इबादत के लिए तो बहुत चीजें दी हैं, इसलिए आप जिक्र, हम इसलिए जिक्र ना करें, हम जाएंगे तो इतना सवाब मिलेगा, इतना सवाब मिलेगा, सवाब शवाब की छोड़ें, वो तो अल्लाह ताला जो चीज देगा उसमें रिवार्ड देगा ही देगा। कोई काम अल्लाह के हुक्म से आप करेंगे तो उसमें रिवार्ड है ही। मकसद समझे अल्लाह के जिक्र का क्या है, कि हम मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, हमारे अंदर बहुत ऐब हैं और कोई चीज भी इसको साफ नहीं कर सकती, अल्लाह बि ज़िक्रुल्लाह। कुरान ने ऐलान किया, अल्लाह कोई चीज तेरे अंदर को धो नहीं सकेगी, कोई इबादत नहीं धोगी। नमाज पढ़ रहा होगा मुनाफिक होकर कर रहा हो, तलावत पढ़ रहा है मुनाफिक होकर कर रहा है, हज कर रहा है मुनाफिक होकर कर रहा है। वाहिद एक ऐसी चीज है कि जब तू जिक्र करेगा, और जिक्र ये नहीं कि 12 तस्वीर 13 तस्वीर 14 तस्वीर 15 मिनट और, नहीं, डिपेंड करता है कि तू कितना बड़ा मुनाफिक है। जब तक तू खुद अपने आप को तजिया ना कर ले कि मैं अब साफ होना शुरू हो गया हूं, पाक होना शुरू हो गया हूं, उस वक्त तक जिक्र करता रहे, बस कुल कसीरा मुकरता हूं वो असीरा। फरमाया सुभान अल्लाह, तेरी खुराक जिक्र की यह है, कसरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तेरा मामूल यह है कि सुबह और शाम उसको करता रहे, सुबह शाम पे इक्तफा नहीं करना, यह इबादत है। हम जना 10 तस्वीर कर लें, खुशी के 5 नहीं, मराकबा जो है हर वक्त करना है आपने। जब मैं बींग शेख आपको कहता हूं 12,000 का आपने तस्वीर करनी है, किसी को 1,000, किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 50,000 बताता हूं तस्वीर, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मरीज होते हैं, मुख्तलिफ बताता हूं, ठीक है ना। तो बेशक अगर 1,00,000 भी किसी को बताऊं तो वो 1,00,000 लिमिट तो है तस्वीरों की, लेकिन जिक्र की लिमिट नहीं है। जिक्र की लिमिट क्या है कि वो तो दिल पे मैंने जिक्र दिया आपको, वो तो हर वक्त अल्लाह को याद करना है। देखें कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको चीज, फिर भी आप ना समझे तो कितनी बड़ी बात है, समझाए ना बात। ये हमारी लिमिट नहीं है, जब अल्लाह ने लिमिट नहीं दी तो मैं जिक्र की लिमिट कैसे दे सकता हूँ, 10 तस्वीर करें या 15 तस्वीर करें। ये तो बतौर खुराक दी है, जैसे अल्लाह ने कहा सुबह और शाम जिक्र करो, ये तो एक अल्लाह ताला ने एक वक्त दे दिए, 2 किस्म में तो आपने बैठना ही बैठना है ताकि घूमे ना, लेकिन जहां तक जिक्र का मामला है, ये सुबह शाम बैठने से वही ना, अब तुम फारिग हो गए हो, अब दिन के अंदर जो चाहे करते रहो, नहीं, वस्कुरुल्लाह कसीरा, फना रहने रोज, क्योंकि तुम मरीज ही है। अब मर्ज तो बहुत बढ़ रहे हैं, मर्ज के लिए अल्लाह ने कहा है फी कुलूब मरदन फसाद हमला, कि अगर तेरे दिल के अंदर जो नफाक है आज, और तूने इसको अगर सही नहीं किया, फसाद, अल्लाह का कहते ये बढ़ता चला जाएगा, और इतना बढ़ेगा कि जब तू दुनिया से जा रहा होगा तो मुसलमान ही काफिर होके जा रहा होगा, क्योंकि तूने अल्लाह के कुरान से बात सीखी नहीं। कैसे हो सकता है कि आज तू नमाजी बन जाए, कल तू फिर चोर बन जाए, आज तू फला बन जाए, कल तू फिर ड्रग्स शुरू कर दे। वजह उसकी यही है कि तूने तो सपने आपको देखा ही नहीं कि तेरे अंदर कितना गंद और बुत घुसे पड़े हैं, तेरे अंदर कितनी मुसीबतें घुसी पड़ी हैं। अपने अंदर देख के इलाज आपने करना है। इसलिए जो शेख होता है वो कसरत जिक्र पे डाका नहीं मारता, जो उसने तादाद दी है वो तो आपको और मुझे इसलिए दी शेख ने कि इस मुकाम तक आपने करते रहे, लेकिन जहां जिक्र करने का ताल्लुक है इसलिए तो कल भी जिक्र करते हैं। हमारे यहां जबानी जिक्र नहीं है, है ही नहीं, नक्शबंदी सिलसिले बताएं क्या जिक्र है जबानी, मुझे बताए कोई भी, किसी शेख को उठा के देख लें आप, नक्शबंदी शेख को, वो नहीं तस्वीर गिनता, सुभान अल्लाह, اگر اس سے کہیں گے نہیں تسبیح, ہنسنے لگے گا کہ تسبیح اور تو نقشبندی چشتی لگتا ہے خاطریہ لگتا ہے, ہمارے یہاں یہ کام نہیں ہوتا بھائی, ہمارے یہاں کام نہیں ہوتا, کہتے ہم تو نقشبندی ہیں. ہمارا ذکر وہ ہے جو حضرت ابو صدیق کا ذکر تھا, بھلے سبحان
اللہ.
اور ابو صدیق کا ذکر کون سا تھا؟ جو کہ ان کے محبوب کا ذکر تھا, ساتھ سے ہیں. سب سے زیادہ صحابہ میں کس کو صحبت ملی ہے مولانا بتائیں؟ سب سے زیادہ تمام صحابہ میں 1,24,000 میں جو ستارہ چاند سورج چمکتا ہے صحبت کے حساب سے کوئی صحابی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق, جن کی آپ اولاد ہیں اور نقشبندی ہیں. بولے سبحان اللہ, کتنا بڑا نعمت اللہ نے دیا. افسوس کی بات ہے, ہو بندہ نقشبندی اور موت جب آئے تو ہو بندر, یعنی ہو نقشبندی اور ذکر اس کا ہو ہی نہیں اندر. مجھے بتاؤ کیا آدمی آج کے بعد سچا پکا وعدہ کریں کہ ہر وقت دل کو اللہ کے ساتھ ہم نے رکھنا ہے, کریں گے؟ زبان شبان نے ہمارے پاس تسبیح نہیں ہوتی, ہم نے کبھی ہاتھ میں تسبیح رکھی پتہ نہیں کیوں, کچھ میں دیکھتے ہیں کہ وہ تسبیح پکڑی ہوئی نقشبندی ہے کیا, تسبیح ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے. وہ اللہ نے تجھے پکڑ سے اونچا مقام دیا ہے, تو کیا ریا مارتا پھر رہا, تسبیح درود پڑھ رہا ہوں, یہ پڑھ رہا ہوں. ہر چیز دل سے کر جو کرنا ہے, دل کو زندہ کر دے. خلوت انجمن, حضرت مجدد حسین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مبتدی کی ابتدا ہی یہی ہے. سبحان اللہ, کہتے ہیں ہمارے مریدوں کی جو نقشبندی مرید بنتے ہیں, ایک بات غور سے سنیں, میں کوئی مقابلہ نہیں کر رہا قادریہ کا یا چشتیہ کا, میں تو خود چاروں سے سنوں کا غلام ہوں, مجھے اجازت ہے اس کی. حضرت شیخ نے مجھے تو ریٹرن دیا ہے کہ تو قادری بھی ہے, چشتی بھی ہے, سہر وردی بھی ہے, لیکن زیادہ تو بننا نقشبندی شیوی کا, زیادہ نقشبندی بن کے رہا تو. ہمارے تو سلاخوں پہ سارے سلسلے ہیں, سب اللہ کو ملانے والے ہیں, لیکن جو بھائی دودھ کو دودھ کہا جائے گا اور جناب ملائی کو ملائی کہا جائے گا, یہ نہیں ہے نا. آسان راستہ ہے, الحمد للہ اللہ نے دیا یہ راستہ آسان دیا ہے بھائی. یہ تو نقشبندیوں کے آدمی اللہ کو یاد نہ کر لے تو بک عجیب بات ہے, مجھے بتائیں. تو نقشبندی بن جائے آدمی, نقشبندی ہوتا کیا ہے کہ جس کے دل پہ اللہ کا نام نقش ہو گیا, پرنٹ ایسے پرنٹ کرتا ہے شیخ, اس کو تو نقش بندی. پھر وہ کبھی یہ ڈرامے نہیں کرے گا اللہ کے فضل سے, یہ کوئی کبھی گناہ کر دے نہ, الحمد للہ اگر سگریٹ چھوڑی ہے نقشبندی بن کے تو زندگی بھر ہاتھ اس کو نہیں لگائے, شراب کے جام کو پھینکا ہے تو زندگی بھر شراب کو ہاتھ نہیں لگائے, وہ ہوتا ہے نقشبندی. نقش ہو کے زندگی اب کیا پلٹنا, اللہ کے ساتھ چلے گئے تو چلے گئے, الحمد للہ اب تو ذکر ہی ہے, ذکر ہے اور فکر ہے بس, اللہ کی یاد ہے اور کچھ بھی نہ انسان کے دل. تو کرنا کتنے ہم نے, کثیر کرنا ہے. اور کثیر کا معاملہ کیا ہے؟ تسبیحات نہیں بلکہ کیا, دل پہ ہر وقت اللہ اللہ اللہ. اتنی پریکٹس کرے آدمی, ہر چیز سے پریکٹس تو کرنی پڑتی ہے نا, ہر وقت دو منٹ بھی ملے تو مراقبہ, ایک منٹ ملے بھی تو مراقبہ, ایک سیکنڈ بھی ملے تو مراقبہ, گردن ایک دم نیچے جائے نا دلی کی طرف اللہ کو, جس طرح جاتے نا بیٹھتے نا کبوتر آنکھ بند کر کے, بس وہی ہو حساب. ادھر تو کوئی بھی نہیں دیکھتا نقشبندی, کبھی مسجد میں آئے نماز کے لیے کبھی نہیں دیکھے گا کیا ہو رہا ہے, نہیں بس اللہ, تب تکبیر ہوگی تو آنکھ کھلتی ہے اس کے, الحمد للہ کبھی تکبیر ہوگی چلو جماعت جماعت ہونے والی, ورنہ اس کو ہوش نہیں ہوتا. اس کے لیے تو دو منٹ مل جائیں تو بہت بڑی نعمت ہے. میں آپ کو حقیقت پڑھاؤں, اس دو منٹ میں اس کو کشف شروع ہو جاتے ہیں, اللہ ہو کر زیارتیں ہو جاتی ہیں اس کے بزرگوں کی, کیونکہ وہ بہت بڑا اونچا ٹائم ہے, اللہ کے گھر میں آیا ہے سبحان اللہ. اور کون سا وقت ہے کہ جہاں ابھی تکبیر ہونے والی ہے ان مسجد میں انتظار کر رہا ہے ایک فرض نماز کا, ابھی امام صاحب تشریف لانے والے ہیں, دو منٹ اس کو اس وقت ملے ہیں جو کہ پریشیس سب سے قیمتی زندگی کے اس کا ٹائم ہے, اللہ کے گھر میں پہلی صف میں اور مسجد جماعت کے انتظار میں, نماز فرض کے انتظار میں, فرشتوں کو نزول در رہے ہیں, اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں, اس وقت بیٹھ کے وہ اللہ کا ذکر مراقبہ کر رہا ہے تو کشف جاری ہو جاتی ہے اس کو. اور بعض دفعہ تو بزرگ نے سنا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں, بات بزرگ کہتے ہیں بعض دفعہ وہ دو منٹ اتنے لگتے ہیں کہ جیسے میں نے 10 سال مراقبہ کیا ہے, اتنی سیر کراتے ہیں نقشبندی, ہم سیر کہتے ہیں ہمارے اس کو اپنے رتائش پر. اب یہ باتوں سے نہیں آتے, آ گئے جناب بیٹھ گیا گھڑیاں دیکھنے لگے کتنی دیر باقی, مولوی صاحب آئے نہیں ہے, آئے نہیں ہے بےچارے کو, ایک آدھ منٹ لیٹ ہو گیا مولوی صاحب, وضو کی جیسے تو ساری آدھی مسجد دیکھ رہی ہوتی کیوں لیٹ ہوئے, کرتے ہیں نا ہم, لیکن نقشبندی کا کام یہ نہیں ہے. वो तो कहते लग रहे और लेट होता कहीं 5 मिनट और मुराकबा कर लो, क्यों बोलना ऐसे हमें मौलाना नक्शबंदी हो तो वो तो खुद बेचारा नक्शबंदी हो, उसको खुद पता है टाइम पे नहीं है, उसको माफ कर दें देर आए तो कोई बात नक्शबंदी जो। तो बहरहाल दोस्तों बहुत अच्छी हदीस थी आज अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक हमें सबको इस गुनाह से बचाए कि दो रुख ना हो, और बहुत बड़ी सजा है इसकी कि दो चेहरे हो जाएंगे, दो जबानें लग जाएंगी, आंखें डबल हो जाएंगी, मुंह डबल हो जाएगा, जिस्म डबल हो जाएगा, और किस शक्ल का होगा कहते हैं जिससे बड़े बड़े पहाड़ है ना ऐसी शक्ल बनेंगी जहन्नुम के, ये शक्ल नहीं होगी, इतनी बड़ी बड़ी डाड़ें होंगी पहाड़ों के बराबर, मुंह बिगड़ चुके होंगे अल्लाह माफ फरमाए, उसमें दो जबानें लगा दी जाएंगी सिर्फ किस वजह से कि अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को हमने अदा नहीं किया, हम दो रुखे इस दुनिया के अंदर फिरते रहे, बल्कि क्यों हकीकत में ये होगा कि हमने ये मर्ज हमारे में है हर एक में, हमने इसका इलाज नहीं किया, हमने अपने जिक्र अपने दिल को साफ नहीं रखा, जिक्र की तरफ नहीं गए, जिक्र वालों के पास बैठे नहीं, हमने कभी एहसास ही नहीं किया कि हम बीमार हैं, कि उसकी सजा होगी सारी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक नसीब फरमाए।